まあ、ラーマハレハレ。हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार विंद भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से यहां केशव सखा प्रभु और कविता केवल लाल प्रभा के प्रेरणा से 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत का श्रवण वर्णन आपको हमको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। आज दूसरे दिन आप जो महानुभाव पधारे हैं आप सबका स्वागत करते हैं। कल हमने श्री श्रीमद् भागवत की महिमा जो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताई गई है उसका श्रवण किया। और फिर भागवत के भागवत महापुराण जो सब पुराणों का सम्राट है उसके मंगलाचरण का पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण व्यासदेव के द्वारा इस ग्रंथ के आरंभ में है। पहले ही श्लोक का मंगलाचरण का हम भाव के भागवत का विषय वस्तु क्या है, भागवत का लक्ष्य क्या है, किसके ऊपर भागवत केंद्रित है, भागवत महापुराण का विषय वस्तु सत्यम परम है, परम सत्य है और बुद्धि उसको ग्रहण करे, बुद्धि में उसका निवास हो, ऐसा व्यासदेव मंगलाचरण में वर्णन कर रहे हैं। तो सत्यम परम न कहकर कृष्ण धीमही ऐसे क्यों नहीं कहा? मुख्य कारण ये है कि धर्म के नाम में ज्ञान, कोरे ज्ञान के गुमाने, जिनके पास ज्ञान है नहीं लेकिन ज्ञान की ज्ञान का गुमान है, गर्व है, इसके लिए कहते हैं नाम रूप सब मिथ्या है। ये ठीक है, संसार के नाम रूप संसार समान समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम रूप तो मिथ्या नहीं। तो ऐसे लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों चीजें परम सत्य है, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए सत्यम परम कहा। और कल ये बताया गया था कि सत्यम परम श्री कृष्ण को संबोधन है, जो मध्य का मतलब बीच में जो मंगलाचरण है, गर्भस्तुति में भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य कह के संबोधन किया गया है। और अंतिम श्लोक में भी 12वें स्कंद में जहां भागवत की परंपरा कही गई है वहां भागवत को परम सत्य कहा गया है। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, विषय वस्तु भागवत की है भगवान श्री कृष्ण, जो सबके आदि कारण है, जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा के हृदय में आदि कविये ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान दिया केवल संकल्प मात्र से। ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो प्रलय हो जाती है, वो जो प्रलय होती है उसमें भूर भुवस्व ये 3 लोगों की प्रलय होती है, स्वर्ग लोक तक प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के लोक की प्रलय नहीं होती है, तप जन लोक की नहीं होती है, महर लोक की नहीं होती है। और ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो पुनः सृष्टि होती है, तब भी ब्रह्मा जी को दोबारा भगवान ज्ञान देते हैं हृदय में। सामान्य रूप से हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारे को सब याद होता है जो रात को हमने किया, लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है ये तो जब भगवान देते हैं, ज्ञान दाता तो भगवान है, सच्चित आनंद चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को फिर हर बार भगवान ज्ञान देते हैं, तब ब्रह्मा जी फिर दोबारा सृष्टि करते हैं। बोले ऐसे करने की आवश्यकता क्यों, क्या है? पहले ही श्लोक में है मुह्यंति यम यद सूर्य। सूर्य का मतलब सुर, सुर मतलब देवता, मोहयंती का मतलब मोहित हो जाते हैं। किससे? त्रिसर्गो, ये तीन गुणों के प्रभाव से माया का प्रभाव देवताओं को भी विमोहित कर लेता है। इसलिए भगवान इस दिव्य ज्ञान को सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प से कृपा करके देते हैं। ये भगवान स्वतंत्र है, ये भगवान सर्वज्ञ है, माया अधिपति है, इनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे परम सत्य भगवान में हमारी बुद्धि। वरेण्यम धीमहि, ये गायत्री मंत्र में जो है वरेण्यम का कारण वरण करे। वैसे वर कहते हैं पति को और वधु कन्या को वधु कहते हैं, और जिसका विवाह होता है लड़के का उसको वर कहते हैं। हमारी बुद्धि परम सत्य का वरण करे, ऐसी बुद्धि जो भगवान का वरण करते ही करती है उसको सती मती कहते हैं। सती मती मतलब वो बुद्धि सती है जिसने नित्य शाश्वत परम सत्य भगवान का वरण किया है। तो धीमहि का मतलब वर्ण करने का मतलब भगवान के चरणों को पकड़ना, उसको अपना लेना, अपने आप को उसको समर्पण समर्पित कर देना। और इसके बाद दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण है कि परम धर्म क्या है। कैतव धर्म भागवत से निकाल दिया गया है, ये आगे के श्लोकों में आएगा। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी परिभाषा भागवत में ऐसे है, धर्म काय के लिए करना चाहिए। अब देखें आप सब जगह धर्म के कार्य हो रहे हैं, कहीं पाठ हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, कहीं चौकी हो रही है, काय के लिए लोग कर रहे हैं। प्रायः सब लोग धर्म का काम करते हैं कि हमारे को अर्थ की प्राप्ति हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। लेकिन भागवत कहती है धर्म अर्थ के लिए नहीं है। धर्म अपवर्गस्य, धर्म का लक्ष्य है अपवर्ग की प्राप्ति करनी। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति, पवर्ग का अर्थ है संसार में परेशान होना, परिश्रम करना, थक हार जाना, मृत्यु के भय से सदा भयभीत रहना, इसको प वर्ग कहते। प प ब ब म, ये प वर्ग है और अपवर्ग है मुक्ति। तो धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, धर्म के ऊपर क्यों चलना चाहिए? बोला मुक्ति के लिए। धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है, और यही एक सबसे बड़ी त्रुटि धर्म के नाम में इस वक्त विश्व भर में हो रही है कि धर्म केवल अर्थ के लिए, अर्थ वो स्वार्थ, चाहे स्वर्ग की प्राप्ति का हो, चाहे संसार के धन की प्राप्ति का हो, लेकिन वो हो धर्म का उद्देश्य नहीं है। तो फिर धन काय के लिए, अर्थ काय के लिए है? क्या अर्थ काम के लिए है, भोग के लिए है? प्रायः सब लोग अर्थ प्राप्ति करते हैं भोग के लिए, लेकिन भागवत कहती है अर्थ धर्मस्य। अरे भगवान ने आपको धन दिया है तो उससे धर्म करो, अर्थ धर्म में लगाने के लिए है, अर्थ काम के लिए नहीं है। इसीलिए आप प्राचीन काल के जितने राजा महाराजा देखें, सबने वृंदावन के अंदर सुंदर घाट बनाए हैं, बड़े बड़े महात्माओं के मंदिर, भगवान के मंदिर राजा महाराजाओं के बने हुए, सुंदर बड़े भव्य मंदिर महाराज बनाते थे, अपने अपने रजवा राजमहलों में मंदिर बने हुए। तो जब अर्थ हाथ में आए तो उससे धर्म का कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा का कार्य करना चाहिए। भगवान का मंदिर, धर्मशाला है, अन्नशाला है, जो भी धार्मिक कार्य है उसमें अर्थ को लगाना चाहिए, नहीं तो अर्थ सदा ही दुखदायी है। अर्थ काम के लिए नहीं है तो काम काय के लिए है, इच्छाएं क्यों है? तब कहते हैं काम जीवन निर्वाह, इच्छा इतनी होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए। जीवन का निर्वाह हो जाए, इतना इतनी इच्छा बहुत है। ऐसा नहीं कि 10 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा किया है, अभी और भी कितना और चाहिए और चाहिए, यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन काम का उद्देश्य जीवन निर्वाह, बस भगवान हम भी न रहे भूखे और आया हुआ अतिथि का भी सम्मान हो जाए, धर्म के कार्य हो जाए, बस। हर एक अपने भाग के क्या जितना सुख दुख है वो लाता है। आप लाखों छोड़ के जाओ, अरबों छोड़ के जाओ, अगर योग्य बच्चा नहीं होता तो 6 महीने में पूरा कर देगा, और योग्य होगा कुछ भी नहीं छोड़ जगह जाओ वो नहीं अपना पूरा साम्राज्य बना लेगा। तो फिर जीवन काय के लिए है? जब काम जीवन निर्वाह के लिए, तो जीवन काय के लिए है? तब भागवत कहती है जीवन तत्व जिज्ञासा। मानव जीवन मिला है तो तत्व की जिज्ञासा करो। तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। वो तत्व है, उनका प्रकाश ब्रह्म है, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा वो है, और साक्षात भगवान है वो। ये 3 इसको तत्व कहते, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तत्व है, अद्वैत तत्व है, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना होता है, जो केवल सत्य की अनुभूति कराता है। योगी का लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार है, वो सत्य और चित्त का अनुभव कराता है। लेकिन आनंद की अनुभूति केवल तब होती है जब भगवान की अनन्य भक्ति की जाती है, तब सत्य आनंद तीनों की अनुभूति होती है। भगवान क्या है? बोला पता लगाना है तो पांडवों के घर में चले जाओ, जहां भगवान अर्जुन का सारथी भी हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज का संदेश वाहक भी हो जाता है, और मित्र भी बन जाता है, और उनके यज्ञराज सुदन के अंदर साधु संतों के चरण पादुकाओं का भी देखभाल करता है, और खाने के बाद पतल उठाने की व्यवस्था करता है। ऐसा भगवान कहां मिलेगा? भगवान और भक्ति से ही केवल प्राप्त होता है, यह समझने के लिए, यह समझना मुख्य तत्व है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो केवल स्वर्ग की प्राप्ति कराएं उसको धर्म कहते हैं, मुक्ति की प्राप्ति कराएं उसको मुक्ति का धर्म कहते हैं। लेकिन परम धर्म क्या है? जो भागवत में निरूपित है, प्रेम रूपण, जिसमें अनन्य प्रेम भगवान से हो जाए। बोला कैसे? जैसे गोपियों ने भगवान से अनन्य प्रेम किया, यह है परम धर्म जो श्रीमद् भागवत में निरूपित है। और ऐसे धर्म के पालन करने वाले की पहचान क्या है? निर्मत्सर होते हैं, उनके हृदय में दूसरे के सुख को देख के जलन नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती है, वो ईर्ष्या रहित होते हैं, अनसूय होते हैं। अनसूय का मतलब किसी में दोष नहीं देखते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, हृदय में दया होती है, और सबको भगवान का अंश मान के और भगवान की सेवा में लगा के सुख उनको प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं। वैष्णव वो है जो दूसरे के दुख को सह नहीं सकता है। वैष्णव साधु में और मक्खन में भी बहुत बड़ा अंतर है। मक्खन को जब आग लगती है तब पिघलता है, मक्खन स्वयं को आग लगेगी तब पिघलेगा, लेकिन साधु वैष्णव दूसरे का दुख देख के पिघल जाता है हृदय उसका। कब पिघलता है? जब वो निर्मत्सर होता है, जिसके हृदय में दया कूट कूट के भरी है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे, सारे लोग अमेरिका को बड़ा प्रगतिशील कहते हैं, प्रभुपाद उस धरती के ऊपर चरण रखते ही कहा, हे भगवान, ये रजोगुण और तमोगुण में आलसी लोग और लालची लोभी लोग भाग दौड़ करके दुख पा रहे हैं, इनको सुखी कैसे किया जाए? आप मुझे लाए हैं, आपका कोई उद्देश्य होगा और आप इनको सुखी करना चाहते हैं, तो ये मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। आप इनके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, आप मेरी वाणी में स्थित होके इनके हृदय में बैठे हुए प्रेरणा देना कि ये आपके संदेश को समझ के तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के कम सतोगुण में आएंगे, तब ये आपके ज्ञान को और आपके भक्ति के भाव को ग्रहण करने के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में उतरते ही 65 में ये उनका भाव रहा कि ये लोग बड़े दुखी हैं, ऐसा कौन कर सकता है जिसके हृदय में दया है, जिसमें जो निर्मत्सर है, उनको द्वेष नहीं है, किसी को पराया नहीं समझता है, निरपेक्ष है, किसी से अपेक्षा नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। साधु उसका उसको कहते हैं जो देता ही रहता है, उसको कुछ आशा नहीं है, उपेक्षा नहीं है किसी चीज की, अब निरपेक्ष है। वेद्यम वास्तवम, जो वेदों में वास्तव चीज है वो भागवत में बताई गई है। वेद कैसा है बोले जैसे समुद्र का पानी। अब समुद्र का पानी कोई पी सकता है क्या? नहीं ना, नहीं तो खेती के काम आ सकता है, है तो जल। ऐसे वेद के अंदर जो कुछ भी है वो समुद्र के जल के समान है, लेकिन उसी समुद्र के जल को सूर्य जब तपता है और बादल बनाता है तो मीठा पानी कर देता है। वही समुद्र का जब जब मीठा होकर नीचे बरसता है तो पानी नदियों में पीने के काम भी आता है और खेती में भी काम आता है। ऐसे महान पुरुषों की तपस्या से वेदों के सार को वास्तव व्यास देव ने अमृत के रूप में बादल का मीठा पानी बना के धरती के ऊपर लोगों को भागवत के रूप में दिया है। जो वेदों में ढूंढना मुश्किल है वैसे वेदों में अपरोक्ष है। वेदों में बातें हैं लेकिन इधर उधर इतनी भूल भलाइयां हैं कि उनका अर्थ निकालने में जीवन चला जाता है। तो वेद वस्तु शिवदम, वेदम वास्तवम वस्तु शिवदम, शिवदम का मतलब कल्याणकारी है। भागवत में सबके कल्याण का उद्देश्य है। और फिर कहा है बस इसमें जो है इसके बावा इसमें जो है उसको समझ लो तो और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। किम वापराई, और किसी की जरूरत क्या है। और फिर अधिकारी की बात करते हैं। शुश्रुषु, सुना नहीं, सुनने की इच्छा किया घर में, बोले ऐसे सुन कौन सकता है, एक विशेषण लगाया है। कृति भी, कौन भागवत को सुन सकता है जिसकी सुकृति का उदय हुआ, शुभ कर्म पुण्य का जिसका उदय हुआ। अरे भाई पुण्य कौन सा, दान पुण्य? नहीं नहीं, बोला ये पुण्य तो स्वर्ग प्राप्त कराने वाले हैं, ये भागवत के श्रवण का अधिकारी बनाने वाले नहीं है। भागवत के महात्म में आता है कि जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव पहुंचे तो इंद्र अमृत का कलश लेके आया और आके कहा सुखदेव महाराज ये अमृत का कलश तो आप ले लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, हमको भागवत का अमृत पिलाओ। सुखदेव महाराज बहुत दुखी हो गए और रुष्ट होके कहा कि तुम भागवत के अमृत का मूल तुम्हारे सर्ग के अमृत को समझते हो क्या? तुम उसकी कीमत देके भागवत सुनना चाहते हो? भागवत का रस किसी सौदे की चीज नहीं है कि इसके बदले में तुम्हारा अमृत लेके मैं तुम्हारे को भागवत का रस आस्वादन करके ये अमृत दो। उठाओ अपना मटका और निकलो, तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। और इंद्र को झड़क के वहां से अमृत के कलश के साथ सुखदेव ने रवाना कर दिया, नहीं सुनाई भागवत। और परीक्षित ने भी कहा मुझे अमर नहीं होना है इसका अमृत पी के, मुझे भागवत का अमृत पीना है। तो कौन सा ये सुकृति है, कौन सा ये सौभाग्य है कि भागवत सुनने का अधिकारी कोई बनता है। तब आचार्य गण लिखते हैं कि जिसने पूर्व जन्म में कभी भगवत की को भगवान की सेवा या किसी भक्त की सेवा की है वो सुकृत ही केवल भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त करा सकती, और दान पुण्य नहीं, तप जप इससे संभव नहीं है। केवल भगवत भागवत, भगवत मतलब भगवान के भक्त और भागवत भगवान स्वयं, इसकी कभी कोई सेवा हो गई होगी जाने अनजाने में, तब भागवत के विषय में प्रश्न ऐसे दसम स्कंद में आएगा। भागवत वासुदेव कथा, भगवान की कथा पुनाति त्रियम, तीन का कल्याण करती है, पवित्र करती है, तार देती है। पृच्छतम, जो भागवत के विषय में पूछता है, आयोजन करता है। वक्तारम, प्रकृष्टम, श्रोतम, बोलता है उसको पवित्र करती है, आयोजन करता है उसको पवित्र करती है, जो सुनता है उसको पवित्र करती है। ये तीनों को पवित्र करती है, जैसे गंगा स्वर्ग लोक को, धरती और पाताल को पवित्र करती है, ऐसे कथा तीन को पवित्र करने वाली है। तो ये सुकृति तो इस तो उसका सौभाग्य सुनने का है जिसके द्वारा कभी न कभी कोई भक्ति संबंधी भक्तों के या भगवान की सेवा अज्ञात सुकृति के रूप में हो गई है। हो सकता है कहा कि अरे अच्छा, या कथा सुनने वाले जा रहे थे, बहुत अच्छा है, इतना कहने से भी सुकृति हो जाती। तो जिसका सौभाग्य ऐसी सुकृति होती है वो ही कथा के सुनने की इच्छा करता है, और उसके हृदय में भगवान आके अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है मेरी कथा सुनने जा रहा है, उसके हृदय में आके प्रकट होके बैठ जाते। और जिस हृदय में भगवान आ जाते हैं उस हृदय से सारा अज्ञान अपने आप नाश हो जाता है, उसके हृदय के अंदर फिर तो भगवत तत्व का ज्ञान अपने आप प्रकाशित होने लगता है, और भगवान की भक्ति निस्संदेह उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, जहां भगवान आ जाते हैं। तो ये भागवत सुनने के दूसरे, और फिर कह दिया इसका फल क्या है, तापत्रय उन्मूलनम। ये श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से तीन ताप, एक तो आदि देवक ताप जो को प्रकृति का कूप कोप है, कहीं अकाल आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं मारा मारी हो गई, लड़ाई हो गई, ये प्रकृति का देविक ताप कहते हैं। और दूसरा, दूसरे प्राणी हमको संकट देते हैं, आदि भौतिक, हाँ पशु पक्षी देते हैं, हाँ पशु देते हैं, मच्छर परेशान करता है, दूसरे मानव परेशान करते हैं, मानवों में भी अपने सगे संबंधी ज्यादा कष्ट देते हैं, तो ये सब संकट सबको भोगने पड़ते हैं। और तीसरे ताप जो है अपने शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं आध्यात्मिक, तो ये ताप त्रय उन्मूलनम ये भागवत का फल बता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसको श्रवण करने वाले ने निश्चित रूप से कुछ तो कई जन्मों में अर्जित किए हैं पुण्य भक्ति संबंधी, तब उसको भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो गए हैं, और तब अब उसके सौभाग्य का क्या कहना, आगे इसके हृदय में भक्ति का उदय होने वाला है, और इसके सारे संकट ताप संताप समाप्त हो गए। अब भागवत की परंपरा बताते हुए कहते हैं कि इस भागवत को सुख मुखाद अमृत द्रवितम, ये सुखदेव के मुख से अमृत के रूप में प्रवाहित हो रही है, पियो भाई पियो, इस अमृत को पियो। बोला कौन पिए, तब दो शब्द कहें, रसिको भूवि भाविका। पहले भूवि शब्द का, भूवि का मतलब केवल ये धरती के ऊपर भागवत का रस उपलब्ध है, ये न स्वर्ग में है न ब्रह्म लोक में है, ये वैकुंठ में भी नहीं है, ये भागवत का रस न तो स्वर्ग में है न सत्य लोक में है न वैकुंठ में है, ये इस पृथ्वी के ऊपर केवल उपलब्ध है, लेकिन किसको है, बोला जो रसिक है और जो भावुक है। रसिक का अर्थ है जिसने रसराज भगवान श्री कृष्ण और रस मूर्ति राधा जो रास विहारणी है उनकी कृपा को थोड़ा सा कणिका कृपा की उनके जीवन में आया आई है, तो वो रसिक है। जिसको इनके रस का थोड़ा सा चस्का लग गया है, ये रस में डूब जाओ। और भाव कौन कौन सा है जिसके हृदय में भाव का उदय हुआ है? और भाव का मतलब यह है कि भगवत संबंधी चीजों के प्रति बड़ा आदर भाव हो। भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की सेवा की सब चीजों के प्रति बहुत भाव, उत्तम भाव हो। जैसे शंकर जी पार्वती को कहते हैं, आराधनाम विष्णु आराधनम परम, सब आराधनों में भगवान विष्णु की आराधना परम है, लेकिन उससे भी महान है तदीय उनके भक्तों की और उनके संबंधी, जैसे तुलसी भगवान से संबंधी है, जैसे गाय भगवान से बहुत प्रिय है, जैसे भगवान के भक्त बहुत प्रिय है, इनकी सेवा करने से भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो भावक वो है जो भगवान संबंधी सब चीजों के प्रति आदर भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं। ये रस पियो। तो इसको रस क्यों कहा गया? पहले कह दिया गिला निगम कल्पत्रो गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद क्या है? निगम का वैसे अर्थ है जहां तक आसानी से पहुंचा ना जाए, जो बहुत दूर हो। निगम कल्पत्रु, कल्पत्रु जो सबकी इच्छा पूरी करता है उसको कहते हैं वृक्ष। तो वेद रूपी इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। पहले फल कह दिया, फिर कहा पियो। ऐसे क्यों कह दिया? फल को पिया तो नहीं जाता है, खाया जाता है। उसका अर्थ यह है कि ये जो भागवत रूपी फल है, इसके ऊपर न तो कोई छिलका है न इसके अंदर कोई बीज गुठली है। बोला फिर अगर रस है तो गिरा होगा तो धरती पे गिरेगा तो फिर पीने के लायक तो नहीं रहेगा, मिट्टी मिल जाएगी। बोला गिरा नहीं है, रस है लेकिन फिर भी फल है। बोला फल है और पका है तो नीचे गिरेगा तो फूट जाएगा, फिर भी वही दोष आ जाएगा, पिया नहीं जाएगा। कोई फल कहीं देखे आपने गिरे हुए होते हैं, मिट्टी में लाते जाते हैं, कोई नहीं खाता है उसको, इसे पड़े रहते हैं। बोला ये फल न गिरा है, पका हुआ फल है, लेकिन सबसे ऊपर की वेद के वृक्ष की, जहां से वेद का वृक्ष शुरू होता है, कौन का वेद? वेद कहां से आया? भगवान से आया। नारायण रूपी वृक्ष के आदि शाखा से ये फल, दूसरी नीचे की शाखा ब्रह्मा जिसके ऊपर बैठा है उसके ऊपर ये फल आया है। ब्रह्मा की शाखा से ये फल नारद की शाखा पे आया और नारद की शाखा से व्यास देव की शाखा पे आया। तो ये परंपरागत एक हाथ से दूसरे हाथ पे आया, ये दिव्य वैदिक वृक्ष है, ये कोई संसार का नहीं है और सुखदेव की भी कोई सामान्य नहीं है। ये सुखदेव तो, ये तो राधा का सुख है, तोता है जो मीठी मीठी कृष्ण की कथा बताकर राधा को प्रसन्न करता है। राधा सुख, तो ये सुखदेव गोस्वामी कोई सामान्य संसार का तोता नहीं है। ये तो गौलोक से भगवान श्री कृष्ण की कथा गागा कर राधा रानी को सुनाते हैं, और जब कृष्ण भगवान को राधा रानी का विरह होता है तो कृष्ण को कथा सुनाते हैं। तो ये तो गोलोक में भगवान का पार्षद है, परिकर है, ये तो इस अमृत का अनुभवी है। इसके मुख से जब निकलता है तो और मीठा होके प्रकट होता है। ये गिरा नहीं है, ऐसे परंपरागत आया है। भगवान नारायण आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, और व्यास से सुखदेव ने कैसे सीखा ये अभी आज बताएंगे कथा में। यहां मंगलाचरण समाप्त पूर्ण होता है तब प्रसंग होता है कि ये भागवत जो हमारे पास उपलब्ध है इसकी कथा का आरंभ होता है नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य यहां से लखनऊ जाएंगे तो रास्ते में सीतापुर आता है, वहां से अंदर जाएंगे तो वहां नैमिषारण्य का तीर्थ है, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। वहां भगवान के सुदर्शन चक्र ने ऋषियों का मार्गदर्शन किया। 88,000 ऋषि सौनक ऋषि के नेतृत्व में कलयुग के आरंभ होने के समय कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए, लोगों को कलयुग के दुख से मुक्त कराने के लिए प्रयागराज में इकट्ठे हुए थे। लेकिन वहां बहुत भीड़ तीर्थ के ऊपर देखी तो भगवान वेणी माधव को प्रार्थना किया कि कौन सा स्थान आप हमको बताएंगे जहां हम आपके भक्ति के अनुष्ठान के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए कलयुग के लोगों के कल्याण का कार्य शुरू करते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके मार्गदर्शन के लिए दिया। सुदर्शन चक्र चला है, ये ऋषि साथ साथ पीछे चले हैं और प्रयाग से ये चक्र आके नैमिषारण्य में पाताल में चला गया। वहां जल निकला, चक्र तीर्थ बना और यहाँ ये 88,000 ऊर्ध रेता ऋषि बैठ के यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे हैं। दीर्घ सत्र स्वर्गाय, 1,000 साल तक जल चलने वाला, और स्वर्गाय का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग में रहने वाले लोग भी जिस भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए, कलयुग के लोगों को कष्ट से बचाने के लिए, कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए अनुष्ठान करके बैठे। तो वहां सूत गोस्वामी आता है। तो ये सूत गोस्वामी कौन है? इसका नाम है उगर सर्व सूता। ये रोम हर्षण सूता का पुत्र है। ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है साक्षात, और रोम हर्षण के पुत्र होने के नाते व्यास देव की गोद में खेला है। और रोम हर्षण का जब बलराम जी ने उद्धार किया तो बलराम जी ने इस सूता उग्र सर्वा को आशीर्वाद दिया था भागवत कथा कहने के लिए। तो जो परंपरा भागवत की है वो बलराम जी की कृपा से सुखदेव के माध्यम से इस सूत उग्र सर्वा के मुख से प्रवाहित हुई। रोम हर्षण का उद्धार भी बलराम जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध काल से थोड़ा पहले तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में किया था, और मुख्य उसका कारण है अब भागवती परंपरा बलराम जी से शुरू होनी चाहिए। कल बताया था एक भागवत की परंपरा पाताल से चलती है, वो बलराम जी से आती है, तो उस परंपरा के अंतर्गत ये सूत जाति का नाम होता है। जो अनुलोम होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करता है तो वो सूत होता है। यहां लिखा है कि वेद पढ़ने के तो अधिकारी नहीं है, लेकिन व्यास देव ने इनको पुराणों का आचार्य बनाया था। तो ये उग्र सर्वा रोम हर्षण मुख्य सूता, जो व्यास देव का शिष्य है, उसका बेटा है। और ये कहता है कि मैं अभी अभी परीक्षित को जब सुखदेव महाराज कथा सुना रहे थे तो मैं वहां उपस्थित था। सुखदेव महाराज ने मुझे अपने पास बुला के बिठाया और कहा, बेटा अब इसको सावधानी से सुनो, आपको ये परंपरा आगे चलानी है। तो वो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आए। नैम ये होता था कि यज्ञ करने के बाद आहुति हो जाए, पूजा हो जाए, तो शाम को कथा सुननी चाहिए, क्योंकि बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रायः हम पूजा पाठ करते हैं एक घंटा आधा, फिर उधर इकट्ठे होकर संसार की बातें करते हैं। जो थोड़ा बहुत हरि कथा सुनी, हरि कीर्तन किया, उसके ऊपर भी उधर ही बैठ के संसार की बातें करके पानी फेरते। तो ये ऋषियों ने कहा कि ऐसे नहीं है, यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद सब लोग बैठ के संसार की चर्चा करें, इसलिए हरि कथा तो उसका अंग है। तो सब ने मिलकर कहा, सूत महाभाग आप भाग्यशाली हैं, आप आए हैं यहां, हमारी आपको, आपने बहुत गुरुओं की लिखा है, स्निग्ध शिष्य हैं अब शिष्यों, आप गुरुओं की बहुत सेवा की है, एक नहीं बहुवचन में गुरु है। व्यास देव का भी कृपा है, बलराम जी आदि गुरुओं के जो शक्ति प्रदान करने वाले, आदि तत्व देने वाले, गुरु तत्व के जो रक्षक है, जो उनके गुरु तत्व का जो शक्ति का स्रोत है, उस बलराम जी का और साक्षात सुखदेव के कृपा पात्र है। तीन तीन गुरुजनों के, और फिर आपका पिता भी पुराणों का आचार्य है, चार चार गुरुओं की कृपा के पात्र हो। कुछ दिन पहले हम ये बात कह रहे थे, आश्चर्य तब लगता है कि पांडवों का अपना पुरोहित धौम्य, पूजा पाठ करने के लिए घर में कृपाचार्य, व्यासदेव उनका अपना वैसे दादा, फिर भी परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज से भागवत सुन रहे और ये सब गुरु उधर बैठे हुए हैं, तो कितना बड़ा विलक्षण आपस में प्रेम है गुरुजनों में कि सब गुरु बैठे हैं, उनके बीच में सुखदेव के पिता व्यास बैठे हैं जिन्होंने उनको भागवत सिखाया, और व्यासदेव के गुरुदेव नारद बैठे हैं, फिर भी सुखदेव की महिमा को सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे बेटा अगर बहुत बड़ा ऊंचे पद पे पहुंच जाए तो किसी पिता को उससे ईर्ष्या नहीं होती है, उसको प्रसन्नता होती है। तो गुरुजनों को प्रसन्नता होती है जब शिष्य कोई जब जन्म सार्थक करता है, दिए हुए ज्ञान को सार्थक करता है, तो उसको बहुत बड़ी आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। तो ये अद्भुत एक उदाहरण हमको देखने में लगा, ये समझने का। इसलिए कहा कि बहुत गुरुजनों का आपने कृपा पात्र हो। अब हमारे 6 प्रश्न हैं आपसे, क्योंकि भगवान शब्द का एक अर्थ है षडगुण संपन्न, जिसमें 6 गुण अनंत हो, असीम हो, उसको भगवान कहते हैं। वैराग हो, सुंदरता हो, ज्ञान हो, त्याग हो, ऐश्वर्य हो, उसको बोलते हैं षडगुण संपन्न, ईश्वर से यशस्य समग्र से अनंत हो। तो 6 प्रश्न भगवान को ही प्रतिपाद्य करने के लिए 6 प्रश्न है, और 6 प्रश्नों के उत्तर में 12 स्कंद। पहला प्रश्न है कि सबका श्रेय क्या है, सबके लिए कल्याण का कार्य क्या है, श्रेय क्या है सबका। प्रिय का मतलब है हमको क्या अच्छा लगता है, और श्रेय का मतलब है शास्त्र अच्छा किसको मानता है, तो श्रेय क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र बहुत है, कहां कहां पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, समय बहुत कम है, और कलयुग के लोग 4 दोष बताए हैं, अल्प आयु, एक तो कम उम्र कम है, और इतनी उम्र कम भी नहीं है जितनी उन्होंने खान पान बिगाड़ के कम की है, रहन सहन का नमूना बद बिगाड़ के कम की है, और दूसरा लिखा कि वो मंद है। मंद का मतलब है आलसी। अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो 4 बजे की, तो आप घर में 3 बजे उठ के 3:30 बजे ट्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। जहाज पकड़ना है 4 बजे का, तो तब आपको 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन कथा में 4 बजे आना है तो 5:30 बजे आएंगे। ये है मंद की पहचान, ये मंद की परिभाषा है। बाकी सब कामों में टाइम से जाएंगे, बाकी हरी कथा में जाना है तो बाद में, क्या जल्दी है, बाद में चलते। ये मंद। और सुमंद क्या है, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, समझता भी सब है, और फिर भी समझे सोचे जागता हुआ आंखें बंद करके सोया, उसको कैसे उठाओगे, जो सोया है उसको तो उठाना आसान है। तो ये सुमंद का मतलब जान बूझ के धर्म अच्छा है, ये सब करना चाहिए, लेकिन करने की इच्छा ही नहीं, ये सुमंद है। फिर दुर्भाग्य, मंद मति सुमंद मत्यो, मंद भाग्य, ये तो उसका भाग्य भी इतना मंद है। भाग्य अच्छा हो तो कुछ हो, भाग्य भी अच्छा नहीं लाया, कलयुग के अंदर आया है, और उपद्रव सब, हम हर समय परेशान रहता है। अब इनके लिए सारे शास्त्रों में एक ही साधन क्या है वो बता दीजिए, क्योंकि ये अपने आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बड़े आलसी। आलसी कितना आदमी, आलसी मंद, एक आदमी पेड़ के नीचे सोया था, पेड़ के ऊपर से बहुत अच्छा पका हुआ बेर गिरा उसके पेट के ऊपर, और दूसरा जा रहा था, बोला भैया इधर आना, तो बोला क्या है, ये बेर उठा के मेरे मुंह में डालो। तो भैया, अरे अपने हाथ से बेर उठा के मुंह में डालो, ये तो आलसी है। बोला ये नहीं, इससे एक और बड़ा आलसी हमने देखा। बोला कौन सा? महाराज ने कहा जब आलसी ढूंढ के आओ तो देखा एक पेड़ के ऊपर आदमी बैठा था। बोला ये सबसे आलसी है। बोला ये कैसे आलसी है, पेड़ के ऊपर तो चढ़ना पड़ता है परिश्रम करके। बोला नहीं नहीं, ये यहां सोया हुआ था, पेड़ उगा, ये पेड़ के ऊपर चला गया, अभी तक नहीं हिला है। ये आलसी में महा आलसी है, इतने आलसी लोग है। चिट्ठी लिखी है कि जाके पोस्ट के डब्बे में डाले नहीं, खिड़की से नीचे डाली, कोई तो उठा जाए, देखेगा डाल देगा। बहुत आलसी लोग हैं, इतने आलसी हैं। हम सब अपने आप को देखना है तो हम कितने आलसी हैं, रात को अलार्म रखते हैं कि वैसे सुबह 4 बजे उठेंगे, घंटी हम खुद रखते हैं, कोई हमको जबरदस्ती नहीं रखाता है। और जब घंटी बजती है तो हाथ सीधा घंटी बंद करने के ऊपर जाता है। ये आलसी की बहुत अच्छी पहचान है, जो घंटी के ऊपर हाथ न जाए और पांव जिसका धरती पे जाए वो समझो कि आलस से मुक्त हुआ है। लेकिन प्राय 99%, और घंटी नहीं भी रखो अगर ट्रेन में जाना है तो अपने आप उठ जाओगे। तो ये आलस की बहुत बड़ी भयानक परिभाषा है जिसके हम सब दोष हमारे ये है। इसलिए एक कोई साधन बताओ। फिर भगवान ये सृष्टि के लिए सृष्टि कैसे करता है, और फिर कौन कौन से ली भगवान की अवतार हैं, और ये कृष्ण बलराम विशेष रूप से अवतार लेके, उन्होंने वसुदेव के घर में अवतार लेके और फिर नंद भवन में जाके क्या क्या लीलाएं की। तो यहां जीवा गोस्वामी पाद ने बहुत बड़ा भाव दिया है कि ये प्रश्न पूछने से उनका भाव है, ऐसे नहीं है कि वो कृष्ण की रसमय कथा वृंदावन की न बताएं, कि वसुदेव देव की पुत्र बताने से काम बनेगा नहीं जब तक यशोदा नंदन और नंद नंदन का परिभाषा नहीं की गई। तो और फिर छठा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए लीला का स्मरण करके तो धर्म ने किसका शरण लिया। तो उस वक्त सूत गोस्वामी बड़ा प्रसन्न हुए हैं कि धन्य है आपके प्रश्न। और फिर दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी का वंदना की है, प्रार्थना की है, गुरु हैं उनके इसलिए सुखदेव महाराज की महिमा को गाया है। और फिर उनके अपने पिता के द्वारा रोमहर्षण के द्वारा जो मंगलाचरण है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, इस मंगलाचरण को किया है। और फिर पहले प्रश्न के उत्तर में दिया कि सबका श्रेय है परो धर्मो अधोक्षजय, परम धर्म सबके कल्याण के लिए है कि भगवान जो इंद्रियों से परे हैं उसके प्रति अहितुकी अप्रतिहता, उसके प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए। प्रभुपाद जी एक बात कहा करते थे कि जो भी दुनिया का धर्म अगर भगवत प्रेम को जगाने का साधन सिखाता है तो वो धर्म सत्य है। धर्म का अर्थ है जो श्रेयकारी एक ही धर्म है, क्या हमारे हृदय में जो भगवत प्रेम है उसको जागृत करने का साधन सिखाए। तो भगवान और अप्रतिहत और अहितुकी, अहितुकी का मतलब धर्म में कुछ हमको भगवान को प्राप्त करने से कुछ लाभ नहीं, कोई उसका हेतु नहीं होना चाहिए। अहितुकी मतलब जिसका कोई हेतु नहीं हो और उसमें कोई प्रतिबंध ना हो, वो धारावाहिक चले, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा सागर तक जाती है, ऐसे धारावाहिक चले। और फिर सारे शास्त्रों का सार क्या है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया, वासुदेव भक्ति, भगवान वासुदेव की भक्ति योग प्रयोजित, ये भक्ति योग को अगर आप अभ्यास करेंगे तो ज्ञान वैराग अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो ये दूसरा जो प्रश्न का उत्तर है, सारे शास्त्रों में भगवान वासुदेव की भक्ति का निरूपण किया गया है। और फिर जब भक्ति का प्रसंग आ गया तो भक्ति को भक्ति के पूरे प्रक्रिया का वर्णन कर दिया है। ये प्रक्रिया के जो श्लोक हैं इसके ऊपर धारावाहिक प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, तब भागवत धर्म उसको कहा। और अमेरिका में उतरते हुए पहला जो उन्होंने कविता लिखा उसमें ये भागवत धर्म के 5-6 श्लोक बंगला भाषा में भी लिखा और संस्कृत में भी ऐसे का ऐसे लिखा, मार्किनी भागवत धर्म, अमेरिका में भागवत धर्म। तो ये समझ लो कि भक्ति का नापदंड है, भागवत धर्म का मूल है। और वो शुरू कैसे होता है कि भक्ति के लिए चाहिए भागवत का श्रवण, और भागवत का श्रवण में हमारे को रुचि कैसे होगी, तब लिखा है भगवान के भक्तों की सेवा करने से, महत सेवया भागवत में रुचि रति होगी, वासुदेव कथा रति, भगवान की कथा में रति होगी भक्तों के सेवा करने से। भक्तों की सेवा का अर्थ है भगवान भक्तों की शिक्षाओं के ऊपर चलना। जीवन में पुण्य क्या है? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अगर जीवन में पुण्य चाहिए तो सच्चा पुण्य है श्रृणवताम, सुनना चाहिए। क्या? स्वकथा कृष्ण, वो कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है उसको सुनना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी कथा कही है? भगवद गीता, उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और जो भगवद गीता को सुनता है, समझता है और दूसरों तक पहुंचाता है, वो तो भगवान कहता है मुझे बहुत प्रिय है, उससे पहले कोई प्रिय था नहीं, अब है नहीं और भविष्य में कोई होगा नहीं। आज हम एक श्लोक देख रहे थे, 100 भगवद गीता का वितरण करने वाला भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में श्लोक आया है। और ये महीना गीता जयंती का है, संकल्प कर ले कि हमको 100 गीता का वितरण करना है, तो समझ लो कि भगवान की भक्ति को जागृत करने का आवाहन कर लिया। आवाहन का मतलब अब ना नहीं है, अब तो होगा ही निश्चित रूप से, लेकिन ये संकल्प करना चाहिए। लाभ क्या होता है भगवान की कथा सुनने से? कोई भी काम दुनिया में, मूर्ख भी कोई लाभ नहीं है तो काम नहीं करता है। तो लाभ क्या है? हृदयांत स्थान या भद्राणी, हृदय के अंदर जो भी अशुभ है, कलमश है, पाप है, ताप है, संताप है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, धुनोती, सब धुल जाएगा। कौन धोएगा? सुहृद सतान। सुहृद कहते हैं शुभ चिंतक, और सतान कहते हैं भक्त, भक्तों का जो शुभ चिंतक है भगवान। वो भगवान निरंतर भगवत कथा सुनने वाले के हृदय से सब अनर्थ की निवृत्ति कर देता। इसलिए भक्ति का पहला लक्षण है सारे अनर्थ। अनर्थ क्या? विशेष रूप से क्लेश घनी, पहला लक्षण है भक्ति का क्लेश घनी। क्लेश का मतलब है दुख, और दुख क्यों होता है? पाप के कारण। पाप क्यों होता है? अविद्या के कारण, अज्ञानता। अज्ञानता मूल है, अविद्या अज्ञानता वो मूल है, उसके कारण पाप करने की इच्छाएं होती हैं, वो बीज है, और उससे पाप होता है, और वो पाप के कारण दुख भोगना पड़ता है। और भक्ति ये पूरी श्रृंखला को पाप के बीज से लेकर और अविद्या तक सबका जड़ से नाश कर देती। और ये पहला क्लेश घनी, क्लेश को नाश करने वाली, ये भक्ति का पहला लक्षण है। सुखदा और सुख देती है, और दूसरा लक्षण है तत्काल में सुख देती है। सबका भले की इच्छा होती है, और सबको हम अच्छे लगने लगते हैं, और सब अच्छे गुण आ जाते हैं, और सुख की प्राप्ति होती है। चार सुखदा के अंतर्गत चार विभाजन किया है रूप गोस्वामी पाद। तो कब सुननी चाहिए भागवत? तब भगवान हृदय से सारा अभद्र नाश कर देंगे। तब दूसरा श्लोक बोला, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ट की। नित्यं भागवत सेवया, ये भागवत का श्रवण नित्य होना चाहिए। ये तो 7 दिन आपके हृदय में भागवत की प्रति श्रद्धा पैदा करना, और आपके हृदय में उत्कंठा पैदा करना कि इस भागवत को निरंतर हमको सुनना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, अपने घर में विराजमान करना चाहिए। जिसके घर में भागवत विराजमान है, समझ लो कि भगवान साक्षात घर में विराजमान है, और उसका निरंतर पाठ, नित्य पाठ करने का नियम बनाना चाहिए। वैसे ग्रस्त के घर को भागवत में अंधकूप कहा गया है, अंधा कुआं है जिसका कोई पता नहीं आर पार का कहां पहुंचेगा। इतनी सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, काम के कीटाणु, इच्छाओं की इतनी भरमार है, कोई शांति सुख से कोई ग्रस्त घर में रह सकता हो? ये संभव नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जिस ग्रस्त के घर में चार चीजें हैं उसका घर वैकुंठ। ये भगवत गीता के ज्ञान के 18 जहां लक्षण है वहां। वैसे तो पुत्र ग्रह आदि बंधन का कारण है, लेकिन जिस ग्रह के ग्रस्ती के घर में, एक तो भगवान का सुंदर मंदिर है, कोई स्थान बहुत अच्छा मुख्य, वहां ठाकुर जी को चाहे फोटो हो, चित्र हो, पट हो या विग्रह हो। विग्रह तो जब गुरुजन आदेश दे तब रखना चाहिए, नहीं तो चित्र पत्र कुछ भगवान का एक विशेष, जहां बैठ के रोज, पहला भगवान का मंदिर हो, दूसरा वहां बैठ के रोज गीता भागवत का पठन पाठन करे, दो। और तीसरा, जो घर में भोजन बने वो भगवान को पहले भोग लगा के फिर परिवार को प्रसाद खिलाए। और चौथा, सारा कुटुंब पूरा परिवार ये संकल्प करे कि कम से कम एक टाइम हम साथ प्रसाद खाएंगे, उससे पहले भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। अब सुबह ये संभव नहीं होता है, सबको भागा दौड़ी ऑफिस में स्कूल की है, सायंकाल का नियम बना ले। सायंकाल को बैठ के भगवान को जब तक भोग लगेगा 15-20 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब गृहस्थियों के घर में होना चाहिए। हमारे अपने भक्तों के घर में भी कीर्तन का अभाव है, जबकि कीर्तन ही इस युग धर्म का मुख्य साधन है। मुख्य साधन कीर्तन है, जितनी सफलता कीर्तन से होती है उतनी और किसी साधन से कलयुग में नहीं होती। बच्चे माला नहीं जप पाएंगे, लेकिन कीर्तन में बच्चे भी भाग ले लेंगे। छोटे बच्चा होगा तो भी वो कुछ बजाने में लग जाएगा, चाहे चम्मच उठाए, थाली उठाए, कटोरी उठाए, लेकिन बजाएगा, नाचेगा, गाएगा। तो कीर्तन घर घर में होना चाहिए। ये भारत की महानता थी कि आज से 50 साल पहले, प्रभुपाद कहते हैं तो अब कहना चाहिए, आज से 70-80 साल पहले प्रभुपाद के शब्दों में, गांव गांव में प्रतिदिन कथा का आयोजन हुआ। शाम के वक्त लोग हरि कथा सुनते थे, कहीं राम कथा चलती थी, कहीं भागवत कथा चलती थी, कहीं कीर्तन चलता था। घर घर में भगवान के लिए आदिया होता था, अगरबत्ती होती थी, भगवान के नाम का कीर्तन होता था। ये सब अब समाप्त होता जा रहा है। पहले तो गौ सबके घर में हुआ करती थी, कोई ऐसा घर ग्रस्त का नहीं था जिसमें चार गाय ना हो, और जिसके घर में ज्यादा खूंटे होते थे उसको महान माना जाता था। ये धनी कौन है जिसके घर में गाय ज्यादा है, उसी की महानता ज्यादा हुआ करती थी। तो ये सब संस्कार 75 सालों में समाप्त हुए। तो भक्ति निष्ठा पूर्वक कैसे होगी, जब निरंतर नित्य भागवत सेवया, तो लाभ क्या होगा, तमोगुण रजोगुण समाप्त हो जाएगा, आलस चला जाएगा। तमोगुण का, तमोगुण आलस है, पागलपन है, और रजोगुण लोभ लालच है, आसक्ति है संसार में, वो समाप्त हो जाएगी। और सतोगुण जागृत हो जाएगा, सतोगुण प्रधान हो जाएगा, दो गुणों तो दबा देगा। और सतोगुण में सुख होता है, और सतोगुण में ज्ञान होता है। सतो संजायते ज्ञानम, ज्ञान में तब ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा होगी। और सतोगुण में सवेरे उठने का नियम बनता है, सुबह स्नान करने का नियम बनता है। सतोगुण में प्रभुपाद जी ने तो कहा कि मैं आप लोगों को सतोगुण की शिक्षा देके ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूं। सतोगुण ब्राह्मण का गुण है, और ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म जानाति इति, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो शास्त्र पढ़ता है पढ़ाता है, जो भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ करता है दूसरों को कराता है, जो भगवद गीता स्वयं पढ़ता है, भागवत दूसरों को पढ़ाता है, और जो दूसरों को उदारता से प्रसाद वितरण करके दान के रूप में देता है और दूसरों से कुछ दान लेता है, आदान प्रदान करता है। ये ब्राह्मण के लक्षण। और जब सतो गुण में आ जाएगा तो लाभ क्या होगा? छिद्यंती ग्रंथिस, जो हृदय में अहंकार की गांठ है, जिसने संसार में हमको बांध के रखा है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, संशय समाप्त हो जाएंगे, कोई संशय नहीं रहेगा। भिद्यंति हृदय ग्रंथि छिद्यंति संशय, हृदय की ग्रंथि टूट जाएगी, संशय समाप्त हो जाएंगे और सारे कर्मों के, जो कई जन्मों के कर्म है, वो सब ध्वंस हो जाएंगे और आत्मदृश्यति, अपने आत्मा का दर्शन होगा, अपना आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन रात के अंधकार में हम अपने आप को भी नहीं देखते हैं और अपने सामने पड़े हुए घर में अपनी चीजों को भी नहीं देखते हैं। लेकिन सूर्य का जैसे उदय होता है तो सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और पूरे संसार को देखते हैं। ऐसे आत्म साक्षात्कार के साथ साथ भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है, तो सूर्य का उदय हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो गया तो आत्म साक्षात्कार भी हो गया और संसार भी दिख गया, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो अब इससे हमको आज क्या ले जाना चाहिए कि भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे अंदर इच्छा संकल्प पैदा करना चाहिए। इसके उपरांत भक्ति, ये भक्ति की बात कर रहे हैं और उसके बाद भगवान के सृष्टि का, सृष्टि करने के लिए तीन पुरुष अवतारों का वर्णन है और फिर भगवान के 22 अवतारों का वर्णन करके सुनाया। दो अवतार हयग्रीव और हंस का वर्णन नहीं किया है पहले इस अध्याय में, पहले स्कंद में, ये दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय में ब्रह्मा जी दो अवतार और का वर्णन करते हैं। इन सब अवतारों के नाम लेके वर्णन किया है, हाँ, मच्छ, कच्छ, कुमार, व्यास, नारद, उसके बाद नरसिंह, वारहा, रामचंद्र, कृष्ण, बलराम, ऐसे जब कहा तो एकदम सावधान हो गया व्यास देव लिखते हुए, मैंने कृष्ण का अवतार में कैसे गुना दिया, ये तो सारे अवतारों का स्रोत है। तब एकदम कहते नहीं नहीं नहीं, ये जो सब अवतार कहे हैं ना, ये एते चांश कला पुंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो मैंने जो आपको बताया ना अवतार, ये तो अंश हैं या कला हैं। अंश अवतार होते हैं, कुछ कला अवतार होते हैं, कुछ अंश अवतार होते हैं और कुछ कला के भी कला होते हैं। लेकिन ये जो कृष्ण है, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, ये किसी का कला नहीं है, किसी का अंश नहीं है, सारे ही इसके अंश और कलाएं हैं। वैसे अंश और कला की भी बहुत बड़ी परिभाषा है कि जो केवल किसी एक कार्य के लिए आए वो अंश हैं, जो कार्य के साथ कुछ उपदेश दें तो उसकी वो कला हो जाएगी। इसके और विस्तार किया हुआ है, अवतारों की कितनी श्रेणियां हैं। एक युग अवतार होते हैं, सतयुग का अवतार, द्वापर का, त्रेता का, कलयुग का, इसको युग अवतार कहते हैं। एक गुण अवतार होते हैं, सतोगुण का अवतार भगवान विष्णु, रजोगुण का अवतार ब्रह्मा जी और तमोगुण के प्रधान शंकर जी, ये गुण अवतार है। एक मनवंतर अवतार होते हैं, हर एक मनु के दिन में एक भगवान का अवतार होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 ऐसे मनुओं को अवतार होते हैं, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। फिर लीला अवतार होते हैं भगवान के, पूर्ण अवतार, लीला अवतार, राम जी का अवतार है, कृष्ण अवतार है, ये पूर्ण लीला अवतार है। फिर अंश, फिर शक्ति अवेश अवतार होते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति में वो भगवान का तत्व नहीं है लेकिन भगवान ऐसी शक्ति भर देते हैं कि वो चमत्कारी कार्य करके भगवान की, भगवान के किसी सिद्धांत की स्थापना करने के लिए धरती में भेजा जाता है, उसको शक्ति अवेश अवतार कहते हैं। ऐसे अवतारों के विभिन्न बहुत प्रकार बताए हैं। तब एक प्रश्न उठता है, फिर कह दिया व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला, या सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इदम भागवत नाम पुराणम, ये भागवत जो है ये भगवान के इन अवतारों की महिमा का पुराण है और इसमें इनकी नाम की महिमा है। वैष्णवानाम प्रियम, ये वैष्णव को बहुत प्रिय है। तब सुखदेव, तब सोनक ऋषि ने प्रश्न पूछा है, ये तीन अध्याय पूरे होते हैं, इसको कहते हैं सूत सोनक संवाद। इसमें वक्ता है सूत गोस्वामी और सुनने वाले हैं सोनक आदि ऋषि। तो सुनाने वाला सूता है और सुनने वाले महान ब्राह्मण यज्ञ करने वाले सोनक आदि ऋषि हैं। उनका उद्देश्य सुनना नहीं है, उनका उद्देश्य यज्ञ है, लेकिन सुनना यज्ञ का अंगी है। इसलिए उनका भागवत सुनना मुख्य उद्देश्य नहीं है। लेकिन अब एक प्रश्न किया है उन्होंने, जिज्ञासा पैदा हुई है कि जो, और तब सूत गोस्वामी ने कहा कि आपने मुझे कहा है मैं आपको कुछ सुनाऊं, तो मैं अभी अभी तत्काल सुखदेव महाराज के मुख से परीक्षित को बताते हुए भागवत को सुन के आया हूं और मैं आपके सत्र में भागवत कथा कहूंगा। तो सनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है, ये भागवत किसने प्रकट किया, कहां प्रकट किया, किसकी प्रेरणा से प्रकट किया, और फिर आपने कहा कि सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाया, तो सुखदेव महाराज तो प्रकट होते, जन्म लेते ही वन में चले गए थे, तो उन्होंने ये भागवत कैसे पढ़ा। और फिर अंतिम प्रश्न है कि परीक्षित महाराज तो नव युवक था, इस पृथ्वी का एक क्षत्र राजा था, उसका तो कोई शत्रु भी नहीं था, तो उन्होंने राजपाट छोड़ के भागवत क्यों सुनी, उसको श्राप क्यों मिला। तो ये प्रश्न यहां पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के अंतर्गत आने वाले तीन अध्यायों में व्यास नारद संवाद है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं व्यास नारद संवाद, 4, 5, 6 अध्याय पहले स्कंद का, 19 अध्यायों का ये स्कंद पहला है। तो यहां कहते हैं ये भागवत का प्रकट्य बद्रिक आश्रम में हुआ। बद्रिक आश्रम में भी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पे नारद जी का आश्रम है, व्यासदेव जी का आश्रम है, संप्रायशन कहते हैं। वहां बद्री षंड मंडिते ऋषि सत्र वर्धनम, वहां नित्य ऋषि आते हैं, हरि कथा होती रहती है, व्यासदेव वहां रहते हैं, वहां व्यासदेव का आश्रम है। और जो बद्री का आश्रम गए हैं वो व्यास गुफा को देखने जाते हैं, तो व्यास गुफा से नीचे आते हैं तो सरस्वती जी का तट है। तो यहां भागवत का प्रकट्य हुआ, बोला किसके हृदय में हुआ, बोला व्यासदेव के हृदय में हुआ, किसकी प्रेरणा से हुआ, बोला नारद जी की प्रेरणा से हुआ। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में थोड़ी सी कथा ऐसे बताई है कि व्यासदेव, कृष्ण द्वापायन व्यास इनका पूरा नाम है, क्योंकि व्यास व्यक्ति का नाम नहीं है, जो वेदों का विस्तार करते हैं उसको व्यास कहते हैं, और ये जो आदि व्यास है इसका नाम है कृष्ण द्वापायन व्यास। ये पराशर ऋषि का पुत्र है और सत्वती और पराशर ऋषि के द्वारा इसका प्रकट्य हुआ है, और वही सत्यवती आगे चल के ये व्यासदेव की भी माता है और ये भीष्म पितामह की भी माता है। सत्यवती पुत्र, वो तो सत्यवती का विवाह करके लाया था तो वो उनको पिता ही मानता शांतनु, तो सत्यवती शांतनु से विवाह हुआ था। तो ये सत्यवती और पराशर के पुत्र व्यास का प्रकट्य है, उसका वर्णन है। और फिर व्यास देव ने कलयुग में बड़े दोष देखे तो कहा कि वेद समझ नहीं पाएंगे, एक वेद के चार में विभाजित किया और जयमनी पायल आदि अपने ऋषियों को दे दिया। उसके बाद वेदों को समझाने के लिए पुराण 17 लिखे, फिर भी संतुष्ट नहीं रहा तो महाभारत लिखा, कहा ये तो ना स्त्री जो गुरु आश्रम में नहीं जा सकती है, वैश्य जो बहुत बड़े काम में सारा दिन व्यस्त रहते हैं, और चतुर्थ वर्ण जो काम में इतना लिप्त रहता है बेचारा, और इतनी बुद्धि भी नहीं है कि गुरु आश्रम में जाके वेद पढ़ सके, इन तीनों के कल्याण के लिए महाभारत का प्रकट्य किया, जिसके अंदर सारे शास्त्रों का सार भगवद गीता रख दिया, और जो उपनिषदों का सार है, लेकिन ये तो स्त्री भी पढ़ सकती है, वैश्य भी पढ़ सकता है, चतुर्थ वर्ण के लोग भी पढ़ सकते हैं। तो महाभारत का आविष्कार किया और फिर वेदांत सूत्र लिखा, तब भी असंतुष्ट, अभी तक मैं ही संतुष्ट नहीं हूं मेरे शास्त्रों को प्रकट करने के बाद, तो इनके पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे। जब अपने अंदर थोड़ा सा अभाव का अनुभव हुआ तो सरस्वती के तट पे बैठे हैं, तब उनके गुरुदेव नारद जी वहां प्रकट होते हैं। इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि अपने अंदर कुछ कमी का जब अनुभव होगा तब कोई सिखाने के लिए आएगा। हम भरे होंगे तो दूसरा कौन उसमें कुछ डालेगा, जब खाली समझेंगे तो कोई उसको अपना भली चीज देके भर देगा। नारद ने आते ही कहा, प्रभु, पहला ये गुरु नारद है जिसने अपने शिष्य को प्रभु कहा। अपने शिष्य को प्रभु कहने का तात्पर्य ये है, कैसे मैं आपकी सेवा करूं। इसका अर्थ यह है कि गुरु सेवा का कार्य है। जैसे माता पिता अपने बालकों की सेवा करके, पढ़ा के लिखा के अच्छे आदमी बना के समाज को देते हैं, ऐसे गुरुजन अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देकर भगवान के चरणों में अर्पण करता है। तो अपने गुरु शिष्य को प्रभु बोलता है, इसका मतलब गुरु सेव्य भगवान है, सेवा ही मुख्य है, उसका उद्देश्य है। आपने आप असंतुष्ट लग रहे हैं क्यों भाई, मन और बुद्धि के स्तर पे सब कुछ काम कर रहे हैं क्या, मन बुद्धि आप का मन और आपका शरीर अचिंता आप चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है। तो व्यास देव ने कह दिया और आगे भी कह दिया कि आप पराशर के पुत्र हैं, आप चिंतित क्यों हैं। तो व्यास देव कहते हैं, गुरुदेव मुझे मालूम नहीं पड़ता है मेरी क्या कम रह गया, आप तो प्रकाश सूर्य की तरह सब जगह जा सकते हैं, वायु की तरह हमारे हृदय में प्रवेश भी कर सकते हैं, देखिए तो क्या कमी रह गई। तो नारद जी कहते